توی قدرم و بدونه.
هلو
زکمانی صاحب، السلام علیکم. کچھ دیر کے لیے نیچے آ سکتی ہیں آپ؟
اصل میں
معاف کیجیے گا، میں نے پھر آپ کو ڈسٹرب کیا، شاید آپ سے ملاقات ضروری تھی. درحقیقت یہ 10 ملین میری ساری جمع پونجی ہے، گنڈے کو دے دیجیے. فکر نہ کریں، قرض ہے.
لیکن میں آپ سے کیوں قرض لوں؟ مجھے لینا ہی ہوگا تو اپنی بہن سے لے لوں گی.
یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں آپ سے جزارت نہیں کرنا چاہتا تھا.
نہیں، میں جانتی ہوں آپ کی بہت مہربانی ہے، لیکن یہ غنڈا جو وارنٹ لے کر آیا تھا اس کا پیسہ میں نے واپس کر دیا ہے. یہ معاملہ اب حل ہو چکا ہے، اس کے لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں، آپ سے مجھے ایک معذرت خواہی بھی کرنی ہے اس بدتمیزی کے لیے جو علی رضا نے کی ہے. میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ.
ارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. علی رضا نے آج خود ہی معافی کے لیے فون کیا تھا، البتہ میں نے اس سے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
نہیں، اسے معافی مانگنی ہی چاہیے تھی، اب اس کی عمر ایسی نہیں ہے کہ اس طرح کی غلطیاں کرے.
شاید ہم سب کی غلطیوں کا ایک حصہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہو.
اچھا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، آپ کی بہت مہربانی.
لقمانی صاحبہ، اگر علی رضا کا مسئلہ ہے تو اسے بات کی جا سکتی ہے، اسے حل کیا جا سکتا ہے.
ہمایوں صاحب، میں اس مسئلے پر سوچنا بھی نہیں چاہتی، اور آپ سے بھی درخواست کرتی ہوں آپ اس بارے میں نہ سوچیں، اس کے بارے میں بات بھی نہ کریں. ہیلو،
السلام علیکم محترمہ، انسپکٹر حاطفی ہوں، پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں.
جی فرمائیے.
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس نمبر کے مالک کو پہچانتی ہیں؟
کیوں، کیا ہوا ہے؟
مہربانی کر کے اس ایڈریس پر پہنچیے جو آپ کو لکھوا رہا ہوں. اس نمبر کے مالک کو کچھ پرابلم پیش آ گئی ہے، اس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے.
کیا ہوا ہے؟
تشریف لائیے تو بتاتا ہوں. ایڈریس لکھیے پلیز.
آخری بار اس نے بیرون ملک فون کیا ہے. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، اس نے سب سے زیادہ آپ کو فون کیا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے موبائل میں صرف آپ کا نمبر ڈارلنگ کے نام سے لکھا ہے. تشریف لائیے. اسے پہچانتی ہیں؟
مدد کرو کہ میں چھوڑ دوں، میری تصویروں کی نمائش میں آئیں ایک میرے بعد میری شادی.
اسے پہچانتی ہیں؟
ڈرتی نہیں ہوں کہ تمہاری منگیتر کو پتا چل گیا؟
ڈرتی نشہ آتا ہے، کہتی ہوں اب نہیں پیوں گی، یہ آخری بار ہے. اگر وہ سمجھ گیا تو کیا ہو. مدد کرو کہ میں چھوڑ دوں تاکہ تم سے مدد ہو. جب بھی نشہ آتا ہے، یہ آخری بار ہے. ہائے، اگر وہ سمجھ گیا تو کیا ہوگا تاکہ تم سے مدد ہو.
آج رات اپنی گاڑی بجلی کے کھمبے سے ٹکرا دی، لیکن ایکسیڈنٹ سے پہلے منشیات کا اوور ڈوز لیا تھا. آپ اس کے گھر والوں میں سے کسی کو پہچانتی ہیں کہ ان سے بات کی جا سکے؟
نہیں، मैं सिर्फ उसके घर का एड्रेस जानती हूँ।
तुम इसे कैसे जानती हो?
मेरे लिए तस्वीरें लेती थी, अभी हाल ही में हमारी जान पहचान हुई।
अच्छा, मेहरबानी करके जरा ऊपर तशरीफ लाएं और इसका एड्रेस हमें लिखाएं।
अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपना दर्द बयान करके अपने अजीजों को खोने का गम भूल जाता है। नाज़नीन अहमद की कब्र पर आई है ताकि उसे अपने दुख दर्द बयान करे, बिल्कुल उसी तरह जब वो जिंदा था। नाज़नीन अहमद से कहना चाहती है कि अगर कल रात मेहताब के पास गई होती तो वो अभी जिंदा होती, लेकिन किस्मत में यही लिखा हुआ था। अब नाज़नीन मेहताब की मौत को देखकर पिछले साल के बारे में सोच रही है, जब से वो गुनाह में मुब्तला हुई है, और न जाने कितनी मेहताबें उस मनुष्यात की भेंट चढ़ गईं जो खुद उसने उन्हें दी थी। अब नाज़नीन चाहती है कि काश वो एक साल सबसे बड़ा झूठ होता। वो अपने शोहर की मौत के बाद बहुत सी चीजों को बचाने के लिए नहायत अहम चीजें गंवा चुकी है। नाज़नीन इस वक्त ऐसे लोगों की तरह है जो खुद को किसी गहरी खाई में गिरा देते हैं और फिर बीच रास्ते में पशिमान हो जाते हैं। जब अहमद जिंदा था उस वक्त वो अक्सर नाज़नीन से मोजज़े की बातें करता था, और अब नाज़नीन की ख्वाहिश है कि कोई मोजज़ा हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मोजज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो उस पर यकीन रखते हैं, वाकई यकीन रखते हैं।
अंदर आ जाओ। क्या रिपोर्ट है, क्या हुआ?
सर, बाग गुल नस्तरन से रिपोर्ट मिली है कि वहाँ शायद मंशियात की खरीदो फरोख्त होती है।
रिपोर्ट मोतबर है?
एक नामालूम शख्स ने एक पब्लिक फोन बूथ से फोन करके बताया है। लगता है किसी ने इंतकाम लेने के लिए ऐसा किया है।
तो फिर उस जगह पर गहरी नजर रखो, और अगर कोई मशकूक चीज नजर आए तो कार्रवाई करने से पहले मुझे इत्तला दो।
जी सर।
जी, जरा इधर आइए।
हाँ, कहिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल है आपका?
कोई हो?
अच्छा, जो 137 कहते हैं वो यहीं पर है?
हुक्म करें।
तो यही है
जी।
अच्छा, ये बताओ कि यहाँ के मुलाजिमीन के बारे में किसको पता है?
क्या
किसी कार्य खैर के लिए,
नेक काम के लिए तो बड़े बूढ़े को कदम बढ़ाते हैं बरखुरदार।
नहीं भाई, वो नेक काम नहीं। देखिए, मेरे महल्ले में यानी हमारे कूचे की नाली जाम हो गई है और पानी ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से पूरे महल्ले में बदबू फैल गई और महल्ले कुछ लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। मैंने सोचा कि यहाँ आकर आपस में हल कर लें, इस तरह बेहतर रहेगा।
अच्छा, तो इतना रास्ता चलकर किस लिए आए? एक फोन कर दिया होता, ठीक कर दिया जाता।
आपकी मेहरबानी है, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था।
137।
अच्छा, ये नंबर है। मैंने सोचा कि शायद अच्छा नंबर हो, कोई खास मतलब रखता हो।
कितना बेहतर, मुनासिब है, बहुत अच्छा है। अगर इजाजत हो तो नजदीक से जाकर मामले को हल कर लूं, मुझे भी इत्मीनान हो जाए और महल्ले वालों को भी।
नहीं, इतना जहमत क्यों करेंगे, इतनी सीढ़ियां क्यों चढ़ेंगे, ये लीजिए एक फोन कर लीजिए।
क्या बुरा नहीं लगेगा?
नहीं,
जरा अजीब नहीं है कि मैं यहीं से आपको यहीं पर फोन करूं और आप फिर हमें जवाब दें?
नहीं,
नहीं हो सकता।
नहीं जी, नहीं।
अच्छा तो फिर ठीक है, मैं बाहर से इकदाम करता हूँ।
ठीक है,
आपकी इजाजत से।
कोई बात
तो बाहर से फोन करो। ये इसमें से ले लो एक, मैं
दो ले लो।
बहुत बहुत शुक्रिया,
खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम शादा साहिबा, आप यहाँ काम करती हैं? जी, अब आप फिर ये कहेंगे कि हमने इत्तेफाक से दूसरे को देख लिया।
क्या ये हंसने की बात है?
अगर हंसेंगे तो मुझे खुशी होगी, अलबत्ता अगर हंसने की बात हो तो।
लुगमान साहब, मैं यहाँ काम करती हूँ, मुझे नहीं पता आप समझते क्यों नहीं।
मैंने अगर कोई नामुनासिब काम किया हो तो बताएं, मैंने कुछ कहा है, कोई बुरा काम किया?
बहरहाल अगर आप समझते हैं कि इन हरकतों से अपने सिलसिले में मेरा ख्याल बदल सकते हैं तो सख्त गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो बेरोजगार ना हो या कम से कम कुछ करता हो, ताकि बार बार अचानक मेरे सामने खड़ा ना हो जाए करे। टैक्सी।
ओ भाई साहब, एक मिनट के लिए इधर आइए।
जी जी जी।
किसी काम से यहाँ खड़े हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं?
मेरा अचानक पैर लग गया गाड़ी से, मुझे पता नहीं था कि इसका सेंसर इतना हसास है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे।
तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है?
भाई लगता है आप गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं, नामुस की क्या बात है इसमें।
तुम क्या कह रहे हो, एक मिनट के लिए आओ यहाँ। गाड़ी की बात नहीं है, मैं उन मोहतरमा की बात कर रहा हूँ, और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? क्यों, क्या हुआ, क्यों हैरान हो इतना? ओ भाई साहब, कान खोलकर सुन लो, अगर एक बार भी उस खातून का पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। इस बार तो तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी बार दूसरे तरीके से समझाऊंगा, समझे? अब निकल लो यहाँ।
अच्छा, आप इन मोहतरमा के क्या होते हैं?
क्या रहूँ तो अच्छा है। अच्छा, क्या रहूँ तो तुम्हें पसंद है?
मैं तो चाहता हूँ कुछ ना हो,
मैं उनका होने वाला शौहर हूँ, होने वाला शौहर।
तो फिर मैं क्या हूँ?
मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन चेहरे से तो चौराहों पर फिरने वाले लफंगों की तरह लगते हो।
और तुम वो जवान हो जो सफेद घोड़े पर बैठकर बारात लेकर आने वाला नौशा है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुमने सही कहा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। देखो, अपनी नाक पकड़ो और फौरन पतली गली से निकल लो, पीछे मुड़कर भी ना देखना, निकल लो।
वही, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें चाहती है?
मुझे पूरा यकीन है, अगर यकीन ना होता तो यहां ना खड़ा होता। जाओ, निकल लो, निकल लो।
फरशाद कहाँ है? उसकी तो आवाज भी नहीं आ रही।
मैं सोकर उठा तो वो जा चुके थे।
नहीं पता।
अम्मी, महताब कौन है?
महताब?
हाँ, रात में टॉयलेट के लिए उठा तो देखा आप नींद में महताब महताब कह रहे हैं।
वाकई में?
जरूर फरशाद मामू हैं।
अच्छा, अम्मी ये नहीं बताया।
मेहताब, मेरी एक सहेली है बेटा।
तो फिर रात में रो क्यों रहे थे और कह रहे थे महताब महताब?
पता नहीं, नींद में थी, मुझे याद नहीं आ रहा।
शायद आपने ख्वाब देखा हो कि मर गए हैं। पापा कहते थे जिसकी मौत देखो उसकी जिंदगी बढ़ती है।
आपको बुला रहे हैं।
कौन है?
सफर साहब के भाई।
अच्छा, वही साबिर साहब।
नहीं, कोई खास बात नहीं है, मुझे मालूम उससे क्या काम है।
सलाम अलैकुम परवाना साहिबा।
अरे अपनी आवाज नीची करो, परवाना साहिबा बोलते, उधर चलो। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? तय पाया था कि यहाँ नजर ना आना।
इतना फोन कर रहा हूँ, आपका फोन बंद है।
बंद है तो इसका मतलब यही है कि मैं बात नहीं कर सकती और फिर मैं खुद ही तुम्हें फोन कर दूंगी।
आप तो बहुत दिनों से फोन कर रही हैं।
जब वक्त होगा तो मैं खुद ही फोन करूंगी ना।
देखें, मेरे पास जाफरान बिल्कुल खत्म हो चुका है।
अच्छा ठीक है।
क्या ठीक है, सारे कस्टमर हाथ से निकल गए।
तुम 2 बजे वहीं मिलो जहां हमेशा मिलते हो, मैं खुद ही तुम्हें बताऊंगी।
अरे अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
देर कर दी नाजरीन साहिबा।
हो गई भाई, क्या करें। साबिर गौर से सुनो क्या कह रही हूँ, मैंने हमेशा के लिए काम छोड़ दिया है। देखो ये तुम्हारे बैंक पेपर्स हैं जो मेरे पास।
मजाक उड़ा रही है हमारा। क्या बात हुई जो ऐसा फैसला कर लिया अचानक।
तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि पहला वाला काम शुरू कर दो। ये लो पकड़ो, इस काम का अंजाम बुरा होता है।
आप भी मेरे भाई सफर की तरह हो गई, मुझे नसीहत करें कोई हलाल काम तलाश करूं।
अब जैसी तुम्हारी मर्जी।
आप जरूर कहीं जाने का इरादा बना रही हैं।
ओफो, तुमने तो गली को सर पर उठा लिया है।
अरे भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं तो इस काम से बाहर नहीं निकल सकता। अभी तुम मुझे इसका मजा मिलने लगा था, अब जाकर समझ में आया था कि ये कैसा काम है। अल्लाह मगफरत करे मेरे बाप की, कहते थे कि साबिर इस डाल से उस डाल पर ना उड़ो, एक काम को पकड़ो और उसमें मसरूफ हो जाओ, उस्ताद बन जाओ।
तुम करो उस्ताद भी बन जाओ, मुझसे क्या मतलब।
नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं जिसे मान लूं।
तो मैं भी तो अब किसी से राबिते में नहीं हूँ।
क्यों नहीं, आप मुझे ऊपर वालों से मिला सकती हैं और मैं खुद उनसे जाके मान ले सकता हूँ, उस वक्त मैं खुद उस्ताद बन जाऊंगा, बॉस बन जाऊंगा, ऐसा हो सकता है।
क्या कह रहे हो तुम, ये समझो कि मेरे पास आए ही नहीं। देखो मैं तुमसे कह दे रही हूँ मेरा किसी से राबिता नहीं है, तुम तो कह रहे हो तुम्हें इसका अंजाम मालूम है।
मैं किसी और के पास जाऊंगा, लेकिन अगर कोई नहीं मिला तो आप ही के पास आऊंगा नाजरीन साहिबा।
इतना नाजरीन साहिबा मत कहो।
इस वक्त तो आप सचमुच नाजरीन साहिबा हैं, एक घरेलू औरत। परवाने एक मुजरिम खातून थी जिसने तौबा कर लिया, उस काम को छोड़ दिया। यादेश बखैर, खुदा आपको सलामत रहे नाजरीन साहिबा।
परेशान क्यों है? कोई बात हो गई है? आप भी परेशान हैं, मामू भी परेशान हैं, मुझे बताइए क्या हुआ है?
कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सोच रही हूँ। फरशाद, फरशाद,
खाने पर नहीं आओगे? बच्चा कह रहे मामू को क्या हुआ है?
मेरा जवाब भी नहीं दे रहे हैं।
शायद फिर शायदा का मामला है।
कल तक तो वो ठीक था।
भांजे मामू को कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएंगे।
फरशाद बात क्या है?
मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, हवा खाऊंगा और वापस आ जाऊंगा।
अच्छा आओ एक लुकमा खा लो फिर।
नहीं, नहीं, नहीं।
एक लुकमा बना दूं?
नहीं भाई, दिल नहीं चाह रहा है।
हाँ क्या हुआ, तुम फिर भेड़ों की तरह यहाँ चक्कर लगा रहे हो? कहीं तुम्हारी बहनों ने घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है ना?
कुछ नहीं हुआ है, अगर डिस्टर्ब कर रहा हूं तो चले जाता हूं।
खामोशी से बैठे रहो, अब इतना नखरे मत करो मेरे सामने।
किसी चीज में दिल नहीं लग रहा शेरजाद चाचा।
देखो फरशाद मियां, जब तुम परेशान होते हो और ये जाहिर करने की कोशिश करते हो कि तुम आशिक हो, नहीं हकीकत में तुम शायदा के आशिक हो ही नहीं। मतलब मैं कैसे बताऊं, तुम शायदा के आशिक होने की अदाकारी करते हो बस। हो सकता है कि ये आखिरी और पहली मर्तबा हो कि कोई तुम्हारे रास्ते में आया है। हाँ उसकी कद्र करो, अक्ल ठिकाने रखो, पोजीशन को समझो, ये वही है।
क्या
वही? वही खूबसूरत चाल।
कौन सी चाल?
उसके पीछे जाओ, देर ना करो। अरे मियां इंसान एक बार के इनकार से पीछे थोड़े ही हटता है, तो बहुत बुरी बात है। जाओ, घबराओ मत।
मैं आप पर कुर्बान जाऊं शेरजाद चाचा, आप तो औरत के साए से भी भागते हैं, लेकिन मुझसे कह रहे हैं औरत जिंदगी वगैरह वगैरह वगैरह, सिर्फ गुलामी। फर्ज कीजिए मैं ये गुलामी इख्तियार करना चाहूं तो क्या लेकर जाऊं उसके पास? न काम है न धंधा, उससे जाकर क्या कहूं?
अजीब है फरशाद, मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मेरी जवानी याद आ जाती है। मेरा दिल मेरी बीवी बच्चों के लिए बहुत तड़प रहा है, बहुत।
छोड़िए शेरजाद चाचा, बेवकूफ बना रहे हैं। आपके बाल बच्चे कहाँ हैं?
अफसोस। अफसोस, अफसोस, अफसोस। फरशाद मेरी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। बिल्कुल उस पानी की तरह जो इंसान की उंगलियों से टपकता है, तुम उसे टपकने से रोकने की जितनी भी कोशिश करो लेकिन नहीं रोक सकते। तुम तो इस घर में बहुत आए गए हो, तुम मुझे बता सकते हो कि इस घर की घड़ियां 10:50 पर क्यों रुक गई हैं?
मैंने इस पर गौर ही नहीं किया था।
मैं अभी तुम्हें बताता हूं, मैं ठीक तुम्हारी उम्र का था जब मैंने शादी की, और उसके बाद हमारे यहां एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था अली, खुदा ने हमें दिया था। इस वक्त वो तकरीबन तुम्हारी ही उम्र का होगा। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। मैं जिंदगी बर्बाद होने का खुद बाइस बना। क्यों? इसलिए कि मेरी पूरी जिंदगी दोस्तों के साथ शिकार पर जाना, तफरी करना बन गई थी। पलक झपकते ही मैं एक शराबी बन चुका था, बेकार लाओबाली, जो किसी काम के भी लायक न रहा। मेरी जिंदगी मेरे बीवी बच्चों के लिए जहन्नम बन चुकी थी। एक दिन जब मैं शिकार से वापस आया और दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कोई नहीं है जो मेरे लिए दरवाजा खोलता। घर में सन्नाटा था। वो लोग जा चुके थे, मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़कर जा चुके थे। अफसोस, और फिर कभी वापस नहीं आए। उस वक्त 3:10 बाकी थे। वो मौसम खसा की एक मनहूस दोपहर थी और मैं उसके बाद न साल न महीने न मिनट न घंटे न सेकंड तक मेरे लिए किसी चीज का कोई मानी मफहूम नहीं था। वो जा चुके थे। कुछ बरसों तक मैंने उन्हें ढूंढा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से मैंने शिकार छोड़ दिया, फिर शिकार पर नहीं गया और जिंदगी में संजीदा हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी ने कभी मुझे संजीदगी से नहीं लिया, कभी भी। अब इन तमाम चीजों के बावजूद क्या तुम चाहोगे पूरी उम्र तन्हा रहो, तुम्हारा अंजाम भी मेरा जैसा हो?
मैं जो भी आप कहेंगे करूंगा, लेकिन यूं ही तो उनके पीछे नहीं जा सकते। बताइए क्या करना है, मैं मदद करूंगा।
क्या क्या मेरी मदद करोगे? क्या मैं ऐसा हूं कि तुम मेरी मदद करोगे? बंदे खुदा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए की हैं ताकि तुम्हें बचा सकूं। क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, तुम कुछ करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे?
क्या करूं?
तुमने शहदा से कहा था कि कोई दुकान वगैरह खोलना चाहते हो।
हाँ, यूं ही कह दिया था। उसके लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए। मेरे पास ना पैसे हैं और ना जगह, यूं ही कह दिया।
मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा।
क्या करेंगे?
हाँ भाई, ठीक है सही साहब, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। खुदा हाफिज़।
शेरजा चाचा बताएं क्या करेंगे, मेरा दिमाग फट रहा है, बताइए ना।
तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करूंगा। वही
क्या करेंगे?
वही खूबसूरत चाल।
समझ में आ जाएगा कि आग से नहीं खेलना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। चलें, काम हो गया, मैंने अपना बदला ले लिया।
یه دل درمونده دارم، یه دفتر خونده دارم، قصه داره در میزنه.